ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में पीएम विकास योजना के तहत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया और दिल्ली नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 88 संपत्तियों और 87 बैंक खातों पर रोक लगाई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली विधानसभा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर 2082 के भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। एक रिपोर्ट।
आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान श्री गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और सभी व्यवस्थाओं को कुशलतापूर्वक लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि आमंत्रित अतिथियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। श्री गुप्ता ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि आगंतुकों के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा भवन को विशेष रूप से सजाया जाएगा और संपूर्ण परिसर को रोशनी से जगमग किया जाएगा। इसके अलावा आयोजन स्थल की दृश्यता और भव्यता बढ़ाने के लिए दो बड़े गुब्बारे भी लगाए जाएंगे। बैठक के बाद विधानसभा स्पीकर ने पुलिस और इस कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और अन्य कर्मियों के साथ आयोजन स्थल का भी जायजा लिया। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज रकाबगंज गुरुद्वारे में पीएम विकास योजना के अंतर्गत परियोजना का शुभारंभ किया, जिसे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में श्री रिजिजू ने बताया कि इसमें 31,600 युवा शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत AI, डेटा साइंटिस्ट, 5G टेलीकॉम टेक्नीशियन, AR, VR, ग्राफिक डिजाइनर और सोलर PV इंस्टॉलर जैसे भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए कौशल से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो रही ये परियोजना सिख समुदाय के युवाओं के प्रशिक्षण कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
आज हमारा मिनिस्ट्री के जितने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के हमने काम करने का आज से शुरू किया है। इसमें स्किलिंग के लिए जो बेसिक सिख कम्युनिटी में युवाओं के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के लिए टारगेट करके हम काम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए वो भी हम मदद करेंगे। अलग अलग यूनिट सेंटर बना के काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा होगा।
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। श्री सिरसा ने कहा कि ये पहल आत्मनिर्भर और सशक्त समुदाय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
मैं मानता हूं कि इसके साथ दिल्ली के अंदर नई ऊर्जा आएगी, नए नौजवान बच्चों के रोजगार के मौके मिलेंगे और देश के प्रधानमंत्री द्वारा और किरेन रिजिजू जी द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया, आप इसके अलावा जितना पैसा और खर्च करना चाहते हैं, आप बच्चों पे जो भी स्किल में लाना चाहते हैं, हमें जहां भी आप मौका देंगे, जो भी प्रपोजल लाएंगे, हम तुरंत उसके लिए पैसा देंगे। और ना केवल दिल्ली में, लेकिन अगर सिख कहीं और भी देश में जहां जहां भी उनकी कई जरूरतें, उसके लिए भी वो तत्पर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अपने आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सिख कम्युनिटी को मिली है।
इस बीच श्री सिरसा ने ट्रैफिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं और बुनियादी ढांचे की स्थिति का आकलन करने के लिए आज सुब्रतो पार्क और धौलाकुआं से खेड़की दौला टोल प्लाजा का दौरा किया। निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि डबल इंजन सरकार दिल्लीवासियों के लिए सुगम यातायात, स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
हमारा मानना है कि हम इसको जितनी जल्दी इस एरिया को क्लीन कराएंगे, ट्रैफिक स्मूथ कराएंगे। दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर इस एरिया का बहुत बड़ा योगदान है। जितना ट्रैफिक स्मूथ होगी उतना ही पोल्यूशन का लेवल जो है यहाँ पे कम होता जाएगा। हमारा पर्पस दिल्ली को साफ हवा देना।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज दिल्ली भाजपा द्वारा आयोजित बिहार दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्वांचल मोर्चा के नेता, भाजपा सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। श्री नड्डा ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था।
भारत जैसी भूमि जहाँ हमने नीति को सीखा बिहार है, और वर्तमान काल में अगर हम देखें तो गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से। इसलिए बिहार का एक विशेष महत्व है कि विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती।
वहीं श्री सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है।
देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब बिहार विकसित बिहार की ओर जा रहा है, बढ़ता हुआ बिहार है। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया क्योंकि उनका तो जन्म वहीं हुआ है, पटना मेडिकल कॉलेज में उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है, तो उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जंगल राज में बिहार को लूटने का काम किया गया था और कैसे अब एनडीए के शासनकाल में बिहार बढ़ रहा है, कैसे बिहार का विकास हो रहा है, कैसे हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील जीवन शैली अपनाने पर जोर देते हुए कहा है कि इससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि प्रकृति और अधिक जीवंत बनेगी। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 को संबोधित करते हुए ये बात कही। दो दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रोत्साहन सक्रियता से होगा जो सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना हमारा नैतिक दायित्व है।
आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें, इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा तो पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन का स्तर कम करने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और मानता है कि विकासशील राष्ट्रों के लिए तेज आर्थिक विकास जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सर्वोत्तम उपाय है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए आज तड़के ब्रह्मा अभियान शुरू किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहला विमान हिंडन वायु सैन्य अड्डे से 15 टन राहत सामग्री लेकर तड़के 3 बजे रवाना हुआ और तकरीबन सुबह 8 बजे यंगून पहुंच गया। ये 15 टन राहत सामग्री म्यांमार के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंद लोगों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हुआइंग से फोन पर बातचीत की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भूकंप से हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में सबसे अधिक संख्या में युवा स्नातक हैं। नई दिल्ली में आज यूनियन इंटरनेशनल डी एडवोकेट यूआईए के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि देश की औसत आयु 28.3 वर्ष है जो इसे अन्य देशों की तुलना में सबसे युवा देशों में से एक बनाती है। उन्होंने न्यायिक प्रणाली की दक्षता में सुधार करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि सरकार पेटेंट, कॉपीराइट अनुमोदन और डिजाइन अनुमोदन की डिलीवरी में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 88 संपत्तियों और 87 बैंक खातों पर रोक लगा दी है। निगम ने बताया कि इन सभी संपत्तियों से लगभग 25 करोड़ 75 लाख रुपए का बकाया संपत्ति कर वसूला गया है। निगम ने संपत्ति मालिकों से आग्रह किया कि वे 31 मार्च तक अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर दें। निगम ने कहा है कि कर भुगतान नहीं करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निगम ने बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए निगम के सभी जोनल और मुख्यालय स्तर के संपत्ति कर कार्यालय 31 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में एक CGST अधीक्षक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। CBI ने बताया कि उन्हें एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से GST रिफंड से संबंधित दावों की वापसी को मंजूरी देने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस ने आज उत्तर पूर्वी जिले में सभी 5 उपखंडों सेलमपुर, गोकलपुरी, खजूरी खास, भजनपुरा और नंद नगरी में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन समस्याओं का सरल और त्वरित समाधान तलाशना था। इस कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान 59 में से 43 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर बाकी के लिए संबंधित जांच अधिकारियों को निर्देश दिए गए। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए ओडिशा निवास के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर विशाल गगन ने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी लोगों को ओडिशा की संस्कृति और विरासत को जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस समारोह के माध्यम से ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों को और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। श्री गगन ने कहा कि इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। श्री गगन ने कहा कि ये समारोह शाम 5 बजे से 10 बजे तक चलेगा।
दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है एक फॉर्मल फंक्शन हो रहा है, ये इंडोर स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के इंडोर ऑडिटोरियम है, वेट लिफ्टिंग इंडोर ऑडिटोरियम, उसमें की जा रही है। 2000 की कैपेसिटी है, मैं आशा है 2200-2400 लोग आएंगे और ये वर्किंग डे है लेकिन इतने लोग आएंगे और बहुत भरपूर इसके आनंद उठाएंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चैत्र शुक्लदी, उगादी, गुड़ी पड़वा, चेटी चांद, नवरे और साजिबू चेराबोआ चेराओबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि वसंत ऋतु के आगमन पर मनाए जाने वाले ये त्योहार भारतीय नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक हैं। आकाशवाणी का YouTube चैनल आराधना नवरात्र के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आराधना चैनल नवरात्र के मर्म के बारे में विशेष भक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला दर्शकों तक पहुंचाएगा।
नवरात्रि उत्सव का विशेष आकर्षण अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, हरिओम शरण और अनुराधा पौडवाल जैसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भजन होंगे। ये प्रस्तुतियां प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7 बजे तक प्रसारित की जाएंगी। चैनल के बारे में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने बताया कि चैनल एक विशेष श्रृंखला पेश करेगा जिसमें नवरात्रि के प्रत्येक दिन के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा।
इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर आ रहे हैं देवी माँ की भक्ति से सराबोर अनेकों कार्यक्रम। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आप जुड़े रहिए आराधना चैनल के साथ और सुनिए विशेष कहानियाँ, देवी माँ के अनेक स्वरूप और विभिन्न शक्तिपीठों पर खास कार्यक्रम, जुड़े रहिए।
दिल्ली में आज पूरे दिन धूप खिली रही और साथ में हल्की हवाएं चली। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है लेकिन हल्की हवाएं भी चलती रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में PM विकास योजना के अंतर्गत परियोजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। दिल्ली नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 88 संपत्तियों पर रोक लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।